मुख्य समाचारों में फाइजर सीईओ ने कोविड 19 वैक्सीन प्रशासन में परिवर्तन की घोषणा की। बूस्टर शॉट की संभावित आवश्यकता। भारत में एक दिन में सबसे अधिक 2,17,000 से अधिक कोविड 19 मामले। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। ऑस्ट्रेलियन लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो न्यू साउथ वेल्स की उस महिला की मौत के बाद किसी भी निष्कर्ष पर न जाएं जिसने एस्ट्राजेनेका कोविड 19 वैक्सीन प्राप्त करने के एक दिन बाद रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉट विकसित किया। 48 वर्षीय महिला कथित रूप से डायबिटिक थी और प्रारंभिक परीक्षणों में टीकाकरण का कोई निर्णायक लिंक नहीं मिला है। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष क्रिस मॉय का कहना है कि देश भर में हर दिन लगभग 50 लोगों में गंभीर रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉट होते हैं जिनका वैक्सीन या अन्य दवाओं से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि विशेषज्ञों को महिला की मौत की जांच पूरी करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।
The important thing is that what we have to do is send our condolences to the family, respect their privacy and really let the medical safety systems take their course, not to jump to conclusions and to really understand that coincidence happened.
फेडरल सरकार आवश्यक कारणों से विदेशों में यात्रा करने वाले ऑस्ट्रेलियन लोगों को टीका लगाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है और घर वापसी पर उन्हें संगरोध का विकल्प दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चेतावनी दी है कि टीकाकरण कार्यक्रम सिल्वर बुलेट यानी कोई रामबाण नहीं है और यदि यात्रा फिर से शुरू होनी हो तो देश को एक सप्ताह में 1,000 या उससे भी अधिक कोविड 19 मामलों की तैयारी करनी होगी। न्यू साउथ वेल्स की प्रमुख क्लेडिस पेरिजिक्लिन का कहना है कि वो यात्रा और घरेलू संगरोध का समर्थन करती हैं लेकिन केवल एक टीकाकृत आबादी के लिए ही। उन्होंने सेवन नेटवर्क को बताया कि न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य अधिकारियों के पास अधिक टीके लगाने की क्षमता है लेकिन आपूर्ति की कमी है।
Our issue in New South Wales has been we're ready to step up and do more than we've been asked to. We're happy to help with the rollout, but we just need the safe doses because, you know, that is, we can't, the states can't control the actual supply of the vaccine, but we can certainly support the Commonwealth in rolling it out.
Pfizer CEO Albert Bourla का कहना है कि लोगों को पहले दो टीके प्राप्त करने के 12 महीनों के अंदर एक तीसरे COVID-19 वैक्सीन खुराक की संभावना होगी। श्री बॉर्लो ने वार्षिक पुनः टीकाकरण की संभावना को भी व्यक्त किया लेकिन कहा गया है कि कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है। यूनाइटेड स्टेट्स चीफ साइंस ऑफिसर डेविड कैसलर का कहना है कि लोगों को विविध बूस्ट की आवश्यकता हो सकती है जो अनिवार्य रूप से वैश्विक टीकाकरण की आपूर्ति पर अधिक दबाव डालेगा। इस घोषणा से ऑस्ट्रेलिया के टीकाकरण कार्यक्रम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फाइजर वैक्सीन अब ऑस्ट्रेलिया में 50 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए पसंदीदा कोविड 19 वैक्सीन है। रक्षा मंत्री पीटर डाटन का कहना है कि सरकार खुराक हासिल करने पर काम करना जारी रखेगी लेकिन उन्होंने नाइन नेटवर्क को बताया कि वो फाइजर की घोषणा से हैरान नहीं है।
We did spread our bets. We were criticised at the time for doing that, but we'll make sure that we do it safely and take the doctor's advice. There's always been a question mark about how long people would have their positive antibodies that had already had the virus. It's a question as to how long these vaccines work for. And as we know, I mean, there are millions of people who get the flu shot each year. And that flu shot is modified each year to deal with the different variants and strains as the medical advice is gathered up from around the world as to its effectiveness from the previous season.
क्वींसलैंड के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में पपुआ निगिनी से आए कोविड 19 मामलों की संख्या का पता लग रहा है और इससे इस बात के महत्व पर भी प्रकाश पड़ रहा है कि टॉरेस स्ट्रेट में जल्द से जल्द टीकाकरण किए जाने की कितनी अधिक आवश्यकता है। क्वींसलैंड में पीएनजी से जुड़े कोरोना वायरस के 5 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसके 36 सक्रिय मामलों में से 12 प्रशांत द्वीप राष्ट्र से या उसके माध्यम से यात्रा के हैं। डिप्टी प्रीमियर स्टीवन माइल्स का कहना है कि राज्य ने इस साल अब तक 8 मेडिकल निकासी सहित पीएनजी से 97 कोविड 19 रोगियों का इलाज किया है.
You know, there are islands in the Torres Strait where you can see PNG from their beaches, and where it is very common for people to travel for traditional trade purposes between PNG and Torres Strait Islands like Saibai Island. And so it's incredibly important that we get as many of those folk who we know are vulnerable vaccinated as quickly as we can.
फेडरल कोर्ट ने पाया है कि ऑस्ट्रेलियन लोग ये सोचकर गुमराह हो रहे थे कि उनके गूगल अकाउंट पर लोकेशन हिस्ट्री को बंद करने से तकनीकी दिग्गज लोकेशन के बारे में पर्सनल डेटा इकट्ठा करना बंद कर देंगे. गूगल खाते की स्थापना करते समय कंपनी ने प्रदर्शित की गई चेतावनी के बारे में तर्क दिया कि तब भी ये स्पष्ट था कि लोकेशन बंद होने पर भी वो स्थान डेटा एकत्र करेगा और उसका उपयोग करेगा, लेकिन वेब और ऐप गतिविधि ऑन थी और इसके एक ऐप का इस्तेमाल किया गया था. लेकिन फेडरल कोर्ट के न्यायमूर्ति थॉमस थॉली ने, जैसा कि गूगल ने दावा किया था, इस चेतावनी को स्वीकार नहीं किया और पाया कि कंपनी जनता के प्रति इसकी प्रकृति, विशेषताओं और उसकी सेवाओं के लिए उपयुक्तता के लिए गुमराह करने के लिए उत्तरदायी रही. ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन चेयर रॉड सिम्स का कहना है कि दुनिया में ये अपनी तरह का पहला नियम है.
Today's result sends a very clear message to the digital platforms that they have to be upfront with consumers about what is actually happening with their data, how it's being used, and how consumers can in fact protect their data. These are fundamental issues for Australians going forward in this future digital economy.
ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण मंत्रियों ने उद्योग के लिए राष्ट्रीय स्थिरता प्रदान करने के लिए 2025 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की एक श्रृंखला को चरणबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है. हल्के प्लास्टिक की थैलियां, तिनके, बर्तन और स्टरर उन उत्पादों की सूची में शामिल हैं जिन्हें मंत्री अगले 4 सालों में खत्म करना चाहते हैं. दक्षिण ऑस्ट्रेलिया मार्च में राज्य में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला राज्य था, जबकि विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, एसीटी और क्वींसलैंड ने 2023 तक कुछ वस्तुओं को प्रतिबंधित करने की योजना बनाई थी. फेडरल पर्यावरण मंत्री सुजन ली का कहना है कि देश भर में प्रतिबंध लगाने के लिए 8 विशेष रूप से समस्याग्रस्त एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की सूची एक वास्तविक कदम है.
What this was doing was bringing consistency to what the states are doing, and they all agreed to that. But our plastics plan is also about manufacturers looking at how to use problematic single-use plastics in a remanufacturing process. Because we can't get rid of plastic, and in fact it has its uses, but we know that there are some types of plastic that's really hard to recycle.
भारत में COVID-19 की दूसरी लहर चिंताजनक गति से रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है. आज शुक्रवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 217,393 नए कोरोना वायरस केस दर्ज किए गए और इसी के साथ भारत में अब तक दर्ज कोविड मामलों की संख्या 1,42,91,917 हो गई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,185 मरीजों की कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मृत्यु भी हुई है और देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 1,74,308 हो गई है. ये लगातार छठा दिन है जब कोरोना के नए मामलों के आंकड़ों ने 1.5 लाख का आंकड़ा पार किया है. उधर भारत की राजधानी दिल्ली को अब देश में COVID-19 से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला शहर कहा जा रहा है. दिल्ली में कल गुरुवार की शाम तक COVID-19 के 16,699 नए मामले सामने आए और संक्रमण के कारण 112 लोगों की मौत हुई. कल गुरुवार को संक्रमण की दर 20.22% पर पहुंच गई, जो दिल्ली में अब तक उच्चतम है. दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है. यूं भारत में कोविड 19 के विरुद्ध वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी पर है और भारत भर में अब तक कुल 11,72,23,509 कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 77 सेंट और भारत के 57.74 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में ऑस्ट्रेलियन बास्केटबॉल स्टार शाइला हील को शिकागो स्काई द्वारा WNBA वुमेन्स NBA के पहले दौर में 8वें खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। शाइला हील ऑस्ट्रेलियन बास्केटबॉल दिग्गज शेन हील की बेटी हैं जो 25 साल पहले NBA में खेलते थे। 19 वर्षीय शाइला ने टाउन्सविल फायर में शानदार सीजन खेला और उन्हें लीग की तरफ से यूथ प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल शनिवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। कैनबरा में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री। सिडनी में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। डार्विन में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।